नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में हुई कूचबिहार हिंसा से सियासत और गर्मा गई है। मतदान के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोली से चार लोगों की मौत के बाद यहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। तृणमूल और बीजेपी दोनों ही इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगले चार चरणों में इस घटना का क्या असर पड़ेगा। नरेंद्र नागर जी, कूच बिहार की घटना के बाद बंगाल का चुनावी मूड काफी तनावपूर्ण हो गया है। मामले को ठंडा करने के बजाय नेताओं के बोल और भड़काने वाले आ रहे हैं, जिससे माहौल और बिगड़ने की आशंका लग रही है। आने वाले चरणों में इस घटना का क्या असर पड़ता देखते हैं आप?
घटना का दो तरफा असर होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और तृणमूल के जो समर्थक हैं उनके बीच में क्या इंपैक्ट होगा, तो वो अलग चीज है। और कम्युनलाइज करने की जो कोशिश है कि चूंकि वो जो मारे गए थे वो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, तो वो कोशिश शायद कम ना हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने दो लोगों को, एक को नोटिस दिया है और एक जो है उनको 48 घंटे के लिए रोका है, जिन्होंने इस घटना के बाद कुछ भड़काऊ बयान दिए थे। तो अब दिलीप घोष पे क्या कार्रवाई करती हैं, जो कि यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने ये कहा था कि ये तो एक ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, अगर फिर से ऐसा होगा तो और भी शीतलकुची होंगे। और उन्होंने जो मारे गए उनको दुष्ट छेले कह के उन्होंने उनको कहा था। तो मुझे लगता है कि दो तरफ से इम्पैक्ट होगा। एक ये है कि सेंट्रल फोर्सेस को भी, जो यहाँ पर स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हैं शायद विवेक दुबे नाम उनका, उन्होंने भी उनको समझाया है कि आपको किस तरह से करना है। तो सेंट्रल फोर्सेस की भी भूमिका है, जहां तक मुझे लगता है, जैसी खबरें आ रही हैं। और जिस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि वो तबीयत खराब हो गई थी और सीआरपीएफ वाले उनको, सीआईएसएफ वाले उसको बचा रहे थे और लोगों को लगा वो पीट रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि वाकई उन्होंने उसकी पिटाई की थी, जो कि लड़के का बयान जो आ रहा है, अगर उसको विश्वास करें तो। और उसको क्यों पीटा गया था, क्योंकि वह खेल रहा था, ये डर गए कि ये पुलिस वाले आ रहे, तो बच्चे डर गए तो उसके पीछे भाग गए, उसकी पिटाई कर दी। और जब ये पता चला उस इलाके के लोगों, तो वो अपना हथियार लेके जिस तरह से रजिस्ट करने के लिए आ गया, उसके बाद ये गोलियां चली हैं। तो ये बात तो सच है कि सेंट्रल फोर्सेज और तृणमूल समर्थकों के बीच, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच, एक बहुत भारी तनाव है और भारी डिस्ट्रस्ट का माहौल है। तो वह माहौल जो है, क्योंकि एक बार गोली चली है तो मुझे लगता है, और कुछ लोग मारे गए हैं, तो वो डिस्ट्रस्ट तो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हिंसा उस लेवल पे नहीं होगी। और शायद जैसे कि उनको भी समझाया गया है कि आप इस तरह से गोलियां नहीं चलाएंगे और खासकर छाती में नहीं मारेंगे, इस तरह नहीं मारेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होंगी। लेकिन इसको सांप्रदायिक करने की जो कोशिश है, वह बीजेपी की तरफ से खास करके और तृणमूल की तरफ से कम होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तृणमूल अब भी ये साबित करने की कोशिश करेगी सेंट्रल फोर्सेस वो हमारे खिलाफ है, तृणमूल के खिलाफ है। वो यह भी साबित करने की कोशिश करेगी इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, और उसकी बात में दम इसलिए है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, मेरी समझ से सबसे ज्यादा क्रिमिनल किसी ने बयान दिया है तो चुनाव में, तो शुभेंदु अधिकारी है, जिन्होंने कहा था 70-30 है। अब 70-30 है, इससे बड़ा क्रिमिनल क्या हो सकता है? लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोई कार्रवाई नहीं की, नंदीग्राम का इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भी उन्होंने सिर्फ उसको वार्निंग दी है। तो मुझे लगता है कहीं इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व में चूक रहा है और इस कारण से ही इस तरह के बयान और आ रहे हैं।
तृणमूल और बीजेपी दोनों ही इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आने वाले चरणों में इसका असर इन दोनों में से किस पर ज्यादा पड़ेगा,
यह कहना मुश्किल है। सब असल में इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल एक ही है, जो कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो राजनीति को साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या जो पोलराइजेशन हुआ था 2019 में, जब करीब 60% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो कि सीएचडीएस के सर्वे में आया है 2019 में, क्या वो उससे ज्यादा होगा? प्रशांत किशोर ने अभी इंडिया टुडे के राजदीप से साथ बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि पोलराइजेशन अपनी सीमा छू चुका है। बीजेपी भले कोशिश कर रही है, लेकिन पोलराइजेशन अपनी सीमा छू चुका है। मैं आपको एक जानकारी दूंगा छोटी सी, कि 2002 में गुजरात में जो चुनाव हुए थे, वहां पर 10% मुसलमान है, करीब 90% हिंदू हैं, लेकिन उस चुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 50% वोट मिले। अगर हम ये मान लें कि सिर्फ हिंदुओं ने ही बीजेपी को वोट दिया था, तो आप समझिए कि उस चुनाव में भी 50-55 से ज्यादा परसेंट हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, यानी 45% ने उसे भी कांग्रेस को वोट दिया था। तो गुजरात में जब चरम पोलराइजेशन की स्थिति थी 2002 के बाद, तब भी अगर 45% हिंदू कांग्रेस को वोट देता और सिर्फ 55% हिंदू जो है वह बीजेपी को वोट देता है, और जो कि यहां पर भी प्रशांत किशोर ने ही कहा कि 55% के आसपास वोट देंगे, जो कि लास्ट जो चुनाव हुए थे उससे थोड़ा कम है, तब 60% दिया था। तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होगा, ये जो भीड़ आ रही है उसी लोगों की है जो पहले पोलराइज हो चुके। तो अब इस क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, पिछली बार लोग सोच रहे थे कि मोदी जी को और ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, वो 32% 36% पे आ गए, यानी नो एंटी इनकम्बेंसी बल्कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अब ये देखने की बात है कि जो कोशिश हो रही है पोलराइजेशन की, उससे बीजेपी का जो वोट बैंक है वह 60% से ऊपर होगा या 60% कम होगा, नंबर वन। और नंबर टू, तृणमूल को 70% अल्पसंख्यक के वोट मिले थे, क्या वो 80% या 90% होगा? अगर वो 80 और 90% हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा है इस गोलीकांड के बाद, मुझे लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह तृणमूल के साथ और ज्यादा जुड़ेगा, और मे बी जो उसको खतरा था कि ISF और इसके कारण से मेरे वोट कम होंगे तो वो शायद बढ़ेंगे। तो इस तरह से तृणमूल को थोड़ा लाभ हो सकता है, ये मुझे लगता है।
चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के बैन के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी, अब आगे हम उनकी क्या रणनीति देख सकते हैं बाकी के चरणों के प्रचार के दौरान? बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है कि उन्होंने अपने भाषण से लोगों को उकसाया है, आगे ममता इसे कैसे काउंटर करेंगी?
मुझे लग रहा है कि वह उस तरह के बयान देने से बचेंगी जैसा उन्होंने कहा था कि CRPF का बदलाव करो, लेकिन वे ये कहती रहेंगी कि सेंट्रल फोर्सेज अमित शाह कहने पे काम कर रही हैं। वो ये कहती रहे कि इलेक्शन कमीशन अमित शाह या केंद्र के इशारे पे काम कर रहा, वह उस पर कोई कमी नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके बातचीत में, उनके बयानों में थोड़ा सा रिस्टेंट आएगा।
पांचवें चरण के मतदान की बात करें तो ये कितना इम्पोर्टेंट है सभी दलों के लिए? PM और होम मिनिस्टर की रैलियों में जो जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, इससे क्या समझा जाए?
देखिए, PM और होम मिनिस्टर की रैली में जो भीड़ हो रही है वह क्यों हो रही है? क्योंकि उनको दूर से लाया, आज जैसे कलकत्ता ब्रिगेड परेड ग्राउंड की बात करें, कलकत्ता में रैली हो रही है, लोग आ रहे हैं मिदनापुर से, बसों से आ रहे हैं। तो जब आप बसों के द्वारा लोगों को ला रहे हैं, जब आप, और ये भी है कि आप 1000 रुपए कूपन दे रहे हैं कि आप रैली में आइए, कूपन ले जाइए और कूपन दे के आप एनकैश कर लीजिए अपने गाँव में, जहां पर कोई बीजेपी का बंदा है या कोई उनका उनका धनी सेठ है जो कि उनको हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से अगर कूपन बांट के आप भीड़ कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से कोई असर नहीं है। और दूसरी बात, जिसको 35% वोट मिल रहे, जिस पार्टी 35% तो मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत कमजोर, बस सवाल ही 35 मिल रहे कि 40 मिल रहा है। अगर हम 35% भी बताएं तो जिस पार्टी को 35% सपोर्ट है उसकी रैली में, और खासकर मोदी की रैली में तो भीड़ होगी ही। बस सवाल सिर्फ ये कि ये भीड़ क्या उन लोगों की है जिन्होंने पिछली 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, यह भीड़ उन लोगों की है जिन्होंने पिछले चुनाव में 2019 में तृणमूल को वोट दिया। अगर इस भीड़ में 5% भी वो लोग हैं जिन्होंने तृणमूल को वोट दिया था, तब तृणमूल की चिंता की बात है। अगर इस भीड़ में वो वही लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम तृणमूल को बीजेपी को वोट दिया था, तो तृणमूल के लिए चिंता की बात है। तो सिर्फ ये देखना है कि जो आ रहे हैं वे तृणमूल से खफा लोग आ रहे हैं या वही लोग हैं जो कि 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। अगर वही लोग हैं तो वही रिजल्ट अगर रिपीट होता है तो आप समझते हैं कि 121 सीटों में बीजेपी आई थी और 164 में तृणमूल आई थी। तो अगर बीजेपी का वोट सपोर्ट बढ़ा नहीं है 2019 के मुकाबले में, जो कि मुझे भी लगता है बढ़ा नहीं है, तो उस स्थिति में तृणमूल को घबराने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि उसको 164, 160 सीटों पर चुनाव जीत मिलने वाली है। इसलिए इस भीड़ का आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को समझने के बाद ही हम जान पाएंगे कि वाकई ये तृणमूल के लिए खतरनाक है कि नहीं।
जी, नरेंद्र नागर जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।